शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की एतत् यह रूपां रूप अनुधेयां ध्यान करना चाहिए आत्मा स्व शुद्धिम शुद्धि अभिप्सिताम इच्छा रखने वालों का यत जो भक्ति योगः भक्ति अभयद निर्भय कराने वाली स्वधर्मां अपने व्रति परक कार्यों को अनुतिष्ठताम करने में अनुवाद दोहराएंगे हे भगवान जो लोग अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहते हैं उन्हें उपर्युक्त विधि से आपके चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए जो अपने वर्णानुरूप कार्य को पूरा करने की धुन में हैं और निर्भय होना चाहते हैं उन्हें इस भक्ति योग का अनुसरण करना चाहिए। तात्पर्य कहा गया है कि भगवान का दिव्य नाम स्वरूप लीलाएं तथा उनके संगी जनों को कोरी इंद्रियों द्वारा नहीं जाना जा सकता, अतः इन इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए भक्ति करनी होती है जिससे भगवान के दर्शन हो सके। किंतु यहाँ पर यह बताया गया है कि जो भगवान के चरण कमलों का निरंतर ध्यान करते हैं उनकी इंद्रियां भौतिक कलमशों से पवित्र हो जाती हैं और वे भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। इस युग में सामान्य लोगों के बीच ध्यान शब्द अत्यंत लोकप्रिय है, किंतु वे इसके वास्तविक अर्थ को नहीं समझते। वैदिक साहित्य से पता चलता है कि योगी जन भगवान के चरण कमलों का निरंतर ध्यान करते हैं। ध्यान वस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ति स्वयं योगिना श्रीमद्भागवतम 12.13.1। यही योगियों का वास्तविक कार्य है। अतः शिवजी उपदेश देते हैं कि जो वास्तव में शुद्ध होना चाहते हैं उन्हें इस प्रकार के ध्यान में या योग में लगना चाहिए जिससे न केवल अंतःकरण में भगवान का दर्शन किया जा सकता है वरन अपने समक्ष उनका दर्शन हो सकता है और वैकुंठ लोक या गोलोक वृंदावन में उनका पार्षद बना जा सकता है। स्वधर्मम यथा स्वधर्मम अनुतिष्ठता में शब्द सूचित करता है कि यदि जीवन में किसी तरह की सुरक्षा चाहिए तो वर्णाश्रम धर्म के साथ साथ भक्ति योग ग्रहण करना चाहिए। सामान्यतः लोग सोचते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र के कर्मों को करने या कि ब्रह्मचारी ग्रस्त वानप्रस्थ तथा सन्यासी का कर्तव्य पूरा कर लेने से ही वे निर्भय हो सकते हैं या उन्हें निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त हो सकता है, किंतु वस्तुतः जब तक इन सारे कर्मों को भक्ति योगों के साथ साथ संपन्न नहीं किया जाता तब तक कोई निर्भय नहीं हो सकता। भगवद गीता में कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग ध्यान योग आदि के वर्णन मिलते हैं, किंतु जब तक भक्ति योग तक नहीं पहुंचा जाता अन्य सारे योग जीवन सिद्धि को प्राप्त करने में समर्थ नहीं होते। दूसरे शब्दों में भक्ति योग ही मोक्ष का एकमात्र साधन है। श्री चैतन्य चरितामृत में भी भगवान श्री चैतन्य तथा रामानंद राय के मध्य इस जगत के मोक्ष जिस जगत से मोक्ष प्राप्त करने के संबंध में जो वार्ता है उससे यही निष्कर्ष निकलता है। उस वार्ता में रामानंद राय ने वर्णाश्रम धर्म के पालन का प्रसंग उठाया तो भगवान चैतन्य ने इंगित किया कि वर्णाश्रम धर्म केवल भाई है, एहो भाई, अकेले वर्णाश्रम धर्म से मोक्ष की कोई गारंटी नहीं है। अंत में रामानंद राय ने भक्ति योग का उल्लेख किया, स्थानीय चिता श्रुति गताम तनु वाक मनो भी श्रीमद भागवतम 10.14.3। मनुष्य को चाहिए कि जिस अवस्था में रहे यदि वह भक्ति योग करता है जिसका शुभारंभ भक्तों के मुख से भगवान के दिव्य संदेश को सुनने श्रुति गताम से होता है तो वह क्रमशः अजय ईश्वर को जीत लेता है। ईश्वर अजय है, किंतु जो व्यक्ति स्वरूप सिद्ध पुरुष की वाणी को विनय पूर्वक सुनता है वह अजय को जीत लेता है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि मनुष्य को केवल वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करना चाहिए अपितु भक्ति योग में भी लगना चाहिए। इससे भक्त अजय भगवान को जीत सकेगा और इस शरीर को त्यागने के बाद उनका पार्षद बनेगा। हरे कृष्ण। तो आप सबका इस भगवत कक्षा में स्वागत है। सही भक्तों से निवेदन है, थोड़ा अंदर आ सकते हैं और तो अच्छा रहेगा। तो श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद 24वां अध्याय और 53वां श्लोक। एतत् रूपम अनुधेयम् आत्मशुद्धिम् अभीप्सिताम् यद् भक्ति योगो अभयत स्वधर्मम् अनुतिष्ठिताम्। हे भगवान, जो लोग अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहते हैं उन्हें उपर्युक्त विधि से आपके चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। जो अपने वर्णानुरूप कार्य को पूरा करने की धुन में हैं और निर्भय होना चाहते हैं उन्हें इस भक्ति योग का अनुसरण करना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान शिव स्तुति कर रहे हैं और प्रचेतस को ज्ञान दे रहे हैं। प्रचेतस जैसे कि आप जानते हैं राजा प्राचीन परिषद के पुत्र हैं और जब उनके पिता ने उनको ये आज्ञा दी कि आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें तो ये आज्ञा पाते ही वो तपस्या के लिए निकल गए। ये देखिए वैदिक संस्कृति। आज के समय में किसी युवा या युवती को बोला जाए कि आप तथाकथित गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें तो वो तपस्या करने वनों में नहीं जाएंगे, कहीं और जाएंगे। तो ये मालूम चलता है कि जीवन का लक्ष्य है आत्मशुद्धि करना। और फिर जाके जब वो तपस्या के लिए वनों में गए और जलाशय के पास पहुंचने ही वाले थे कि वहां पर उनको परम वैष्णव शिव जी के दर्शन हुए और शिव जी ने कृपावश उनको ये रुद्र गीत सुनाया। और फिर पिछले 44वें श्लोक से शिव जी भगवान के सुंदर रूप का वर्णन कर रहे हैं और आज कह रहे हैं कि पहले रूप का वर्णन करने के बाद 44 से लेकर 52 श्लोक तक अब वो कर रहे हैं एतत् रूपम अनुधेयम् कि आपको इसी रूप का ध्यान करना चाहिए। क्यों? आत्मशुद्धि अभीप्सित हूं, क्योंकि आप आत्मशुद्धि की इच्छा रखते हैं। हालांकि जो भी आत्मशुद्धि की इच्छा रखते हैं उनके लिए सबसे सरल तरीका है कि भगवान के हम इस दिव्य सुंदर रूप का ध्यान करें। और क्या बोल रहे हैं? यद भक्ति योगो अभयद स्वधर्मम अनुतिष्ठिता। भाई आप तो तपस्या के लिए निकले हैं, आत्मशुद्धि के लिए निकले हैं, लेकिन ऐसे लोग भी जो सधर्मानुनिष्ठिताम अपने अपने धर्म के कार्यों के अनुसार कार्यों में रत हैं, यानी कि वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं अपने अपने वर्णों के अनुसार, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी ग्रस्त वानप्रस्थ संन्यास, इस वर्ण और आश्रम के अनुसार जो अपने अपने कर्तव्यों में रत हैं, वो भी अगर निर्भय होना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? यद भक्ति योग, उनको इसी भक्ति योग का पालन करना चाहिए। अभयद है जो आपको अभय प्रदान करेगी, आपको निर्भीक बनाएगी। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है। देखिए मनुष्य जीवन का केवल एक ही लक्ष्य है कि हम अपने अस्तित्व को शुद्ध करें और ये सुविधा केवल इसी देह में है। पशु पक्षी और निम्न योनियों में वो अपने आप को अपने अस्तित्व को शुद्ध नहीं कर सकते। केवल मनुष्य देह हमें मिला है कि हम अपने आप को शुद्ध कर सके। वैसे तो आत्मा भगवान का अंश है, सनातन अंश है। भगवान परम पवित्र है, परम शुद्ध है, तो उनका अंश होने के नाते हम भी जीवात्मा भी परम शुद्ध है। लेकिन श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जैसे वर्षा की बूंद जो कि पवित्र होती है जैसे ही पृथ्वी पर पड़ती है और पृथ्वी के संपर्क में आते ही वो दूषित हो जाती है, इसी ढंग से जैसे ही हमारा इस भौतिक जगत में पतन होता है, माया के प्रति हमारा आकर्षण होता है कि माया के तीन गुणों के संपर्क में आते ही हमारा दूषीकरण हो जाता है। और अब इस दूषीकरण से निकलने का जो केवल साधन है वो क्या है? केवल ये मनुष्य शरीर। इसीलिए ये जो हमें मशीन प्राप्त हुई है, जो हमें यंत्र मिला है मनुष्य देह के रूप में, इस यंत्र का सबसे सर्वोत्तम उपयोग यही होगा कि इसका एक एक क्षण एक एक पल हम इस ढंग से बिताएं कि जो हमें आत्मशुद्धि के पथ पर आगे ले जाए। तो हमारे बीच जो हमारा दूषीकरण है वो कैसा है? तीनों गुणों के प्रभाव से हम दूषित हो गए हैं और ये दूषीकरण हमारे सामने प्रकट होता है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के रूप में। तो इसको हमने शुद्ध करना है। अब इसको शुद्ध करने के लिए कई विधियां हैं, जैसे बताया गया है तपसा ब्रह्मचर्येण दमेन च समेन च, कि कठोर तपस्याएं की जाए, ब्रह्मचार्य का पालन की जाए, जो गृहस्थ आश्रम में है उनको इंद्रियों को संयम करें, पांच तरह के यज्ञों का पालन करें, उसके बाद जाके हम कुछ अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। लेकिन कलयुग में इन सब विधियों का पालन करना इतना आसान नहीं है, यानी कि बहुत कठिन है। तो कैसे हम अपने आप का शुद्धिकरण करें, सबसे अच्छा तरीका कौन सा है शुद्धिकरण करने का कलयुग में? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि अभी हम भौतिक जगत के संपर्क में आके जो दूषित हो गए हैं, तीन गुणों का मिश्रण है, इसको हमने अलग अलग करना है और शुद्ध सत्व की स्थिति में आना है। श्री प्रभुपाद अपने उस दिन लेक्चर में बता रहे थे कि जिस ढंग से कलर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हर कलर को अलग अलग किया जाता है, उसी ढंग से हमें सत्वगुण रजोगुण तमोगुण को अलग करके अपने आप को शुद्ध सत्व में स्थित करना है। तो यानी कि भक्ति योग का पालन करके ही हम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। अब साधारण भाषा में जब बोला जाए कि भक्ति करनी है, तो लोग समझते हैं कि भक्ति करने का अर्थ है कि अब ये काम से गया, ये निष्क्रिय हो गया, ये किसी भी काम का नहीं रहा, है ना, मतलब कि इसको और कुछ लेना देना नहीं है, ये बस बोले आजकल वो क्या करें उनका मत पूछो, आजकल वो भक्ति में लगे हुए हैं, यानी कि बिल्कुल बेकार के व्यक्ति हो गए हैं, किसी काम के नहीं रहे, किसी तरह के वो उपयोगी व्यक्ति नहीं रहे, निष्क्रिय और ये कुछ करते भी नहीं है भक्त लोग, है ना। तो श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि भक्ति का अर्थ निष्क्रियता नहीं है, भक्ति का अर्थ है अमिश्रित शुद्ध क्रियाएं, अनअलॉयड एक्टिविटीज ऑफ द प्यूरिफाइड ऑफ द प्योर सोल, यानी कि प्यूरिफाइड एक्टिविटीज। डिवोशनल सर्विस डजंट मीन इनएक्टिविटी, निष्क्रियता नहीं है, बल्कि अमिश्रित क्रियाएं, यानी कि शुद्ध क्रियाएं। तो हम जो कार्य करें शुद्ध करें, शुद्ध कार्य क्रियाएं ही श्रील प्रभुपाद भगवदगीता के भूमिका में लिखते हैं भक्ति का अर्थ है शुद्ध क्रियाएं। तो वो हमने करनी है जिससे कि हमारा ये अस्तित्व धीरे धीरे शुद्ध हो। जैसे कि गरुण पुराण में बताया गया है, ओम अभित्रो पवित्रो वा सर्ववास्थ सुगतो विवा या स्मरे तुनरिका आक्षम बाह्य अभियंतरा शुचि, कि हम चाहे किसी भी अवस्था में हो लेकिन हम पुनरिका आक्षम यानी कि कमल नयन भगवान का स्मरण करेंगे तो क्या होगा, बाहर से और अंदर से हमारा शुद्धिकरण होगा। और यही भगवान शिव बता रहे हैं कि एतत रूपम अनुध्येयम आत्मशुद्धि अभीप्सिताम, कि आप इस रूप का ध्यान करो। अब पिछले 8-9 श्लोकों में भगवान के एक एक अंग का बहुत सुंदर वर्णन भगवान शिव ने किया है, तो इससे स्पष्ट होता है कि भगवान परम पुरुष हैं, भगवान कोई निराकार नहीं है, और जो भगवान का रूप है ये कोई काल्पनिक नहीं है, ये वास्तविक रूप है, ये परम सत्य है। भगवान की सुंदरता परम सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम, जो भौतिक जगत की सुंदरता है वो असत्य है, वो अशिवम है, वो शुभकारी नहीं है, पर वो सुंदरता तो है ही नहीं। वास्तव में इस भौतिक जगत में जो भी हमें सुंदरता दिखाई दे रही है वो भी एक आध्यात्मिक स्फुलिंग के कारण, सुंदर से सुंदर स्त्री भी अगर वो अपना शरीर छोड़ देती है, यानी कि मृतक सुंदर शरीर स्त्री की तरफ कोई भी आकर्षक नहीं होगा, जब तक उसके अंदर आत्मा है, स्फुलिंग है, तब तक वो हमें कोई भी शरीर आकर्षक लगता है। तो यानी कि ये सुंदरता है वो आत्मा की सुंदरता है, आध्यात्मिक सुंदरता है। इसलिए भगवान गीता के 10वें अध्याय में कह रहे हैं कि संसार में जो भी ऐश्वर्य आपको नजर आ रहे हैं वो क्या है, मेरे रंच मात्र, जिसे कहते हैं एक अंश के भी रंच मात्र है, जितना भी सुंदरता जितनी भी ऐश्वर्य हमें संसार में नजर आ रही है, तो इस रूप का हमने ध्यान करना है। श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भगवान का दिव्य नाम स्वरूप लीलाएं तथा उनके संगी जनों को कोरी इंद्रियों द्वारा नहीं जाना जा सकता। भगवान इस भौतिक जगत से परे हैं और हमारी इंद्रियां अभी दूषित हैं, तो कैसे हम भगवान के रूप का ध्यान लगा सकते हैं, तो ये संभव नहीं है। तो इसलिए भगवान हम बद जीवों पर अनुकंपा करने के लिए, करुणा करने के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने भौतिक इंद्रियों से केवल भौतिक रूप को देख सकते हैं, इसलिए भगवान करुणावश हमारे सामने इस भौतिक रूप में प्रकट होते हैं, जिसको कहा जाता है अर्च अवतार। तो ये भगवान के जो अर्च विग्रह हैं, ये कोई मूर्ति नहीं है, ये भगवान के अवतार हैं, भगवान अवतरित हुए हैं। जैसे कि भगवान गीता में कहते हैं, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, कि अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, उनपे करुणा करने के लिए मैं अवतरित होता हूँ। तो हम जैसे बद जीवों पे विशेष कृपा दिखाने के लिए, ताकि हम भगवान के रूप का ध्यान कर सकें और अपने आप को शुद्ध कर सकें, भगवान के अर्च विग्रह की उनकी अर्चना कर सके, इस विग्रह की उनकी सेवा कर सकें और अपने आप को शुद्ध कर सकें, इसलिए भगवान कृपावश इस रूप में प्रकट होते हैं। तो हम जैसे साधकों के लिए भगवान के रूप के ध्यान करने का अर्थ है कि हम भगवान के अर्च विग्रह के ऊपर ध्यान दें, उनके रूप के ऊपर ध्यान दें, जिससे कि हमारा मन धीरे धीरे शुद्ध हो। लेकिन हम सब देख रहे हैं, आपस में कुछ भक्त तो बहुत पुराने हैं और कुछ अभी नए नए जुड़े हैं, हम प्रतिदिन आते हैं भगवान के दर्शन, आरती के समय हम दर्शन करते हैं, वेणु कमलंतम अरविंद दलायताक्षम बहारवत्सम सीताम उदम सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमाम रजामि। कितना सुंदर वर्णन है कि भगवान ने मोर का पंख लगाया हुआ है, वेणु पकड़ रखी है और वेणु कमल अरविंद दलायताक्षम, भगवान की जो नेत्र हैं वो कमल के दल के, खिले हुए कमल के दल की तरह हैं। असिताम बुद्धम सुंदर अंगम, भगवान के जो सुंदर अंग हैं वो बादलों के रंग के समान हैं। और ये जो भगवान है ये आदि पुरुष हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि। तो ये प्रार्थनाएं भी हम रोज करते हैं, लेकिन फिर भी हमें भगवान का ये रूप आकर्षक नहीं लगता, हमें अभी भी एक सुंदर पुरुष और सुंदर स्त्री का जो रूप है वो ज्यादा आकर्षक लगता है ना, ये सत्य बात है। तो हम भगवान के रूप के प्रति अभी भी आकर्षित नहीं होते। तो कैसे इस चेतना को बदला जाए? तो श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में भगवान कपिल बता रहे हैं कि भक्ति योग में इतनी शक्ति है कि कह रहे हैं कि जरति आशु वा कोशम निर्गण अमलो यथा, कि भक्ति जीवात्मा के सूक्ष्म शरीर को बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के उसी प्रकार विलय कर देती है जिस प्रकार जठराग्नि खाए हुए भोजन को पचा देती है। जिस ढंग से हमारे उदर में जठराग्नि है और खाए हुए भोजन को वो पचा देती है, इसी ढंग से भक्ति हमारे सूक्ष्म शरीर को विलय कर देती है, यानी कि बिल्कुल बदल देती है, हमारे जो आत्मा है इस सूक्ष्म शरीर से बिल्कुल अलग हो जाता है। तो केवल इस भक्ति के माध्यम से ही हम इस अपने सूक्ष्म शरीर को बदल सकते हैं। श्री प्रभुपाद कहते हैं ये कृष्णा भावना भावित ये जो आंदोलन है ये आपके सूक्ष्म शरीर को बदलने के लिए है। स्थूल शरीर तो हम वैसे ही बदलते हैं, हम ना चाहें तभी हम बदलेंगे ही बदलेंगे, प्रत्येक योनि में स्थूल शरीर बदला जा रहा है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर बदलने की सुविधा है वो केवल इस मनुष्य देह में है। इस मनुष्य देह में अपने इस अपने इस चिप को हम चेंज कर सकते हैं, जिसमें कई कई जन्मों की कोडिंग हो रखी है, गंदगी भरी पड़ी है। तो इस भक्ति योग के माध्यम से ही जो भी हमारा आकर्षण भगवान के सुंदर विग्रह के प्रति आकर्षण ही कोई नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है, लेकिन इस भक्ति योग के हम नियमों का सख्ती से पालन करेंगे तो क्या होगा, हम इस सूक्ष्म शरीर को बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के विलय कर देंगे जिस प्रकार पेट की अग्नि खाए हुए भोजन को पचा देती है। तो इस ढंग से हमें भक्ति योग का पालन कर रहे हैं। भागवतम के 11वें स्कंद में भगवान उद्धव को उपदेश दे रहे हैं और उसमें कह रहे हैं कि भक्ति योग के नियमों का पालन करने के बाद भी अगर हमारा मन विषयों में आसक्त रहता है, हमारा मन इन भौतिक रूपों से भरा हुआ है और उस मन के अंदर भगवान के दिव्य रूप की कोई जगह नहीं है, तो फिर क्या करना चाहिए? ये हम सब साधकों की स्थिति है। कई बार जो भक्तगण हैं बहुत कुंठित हो जाते हैं कि कितना प्रयास कर लिया, कितना नाच लिया, कूद लिया, भगवद्गीता बांट ली, तपस्याएं कर ली, सुबह उठ गए, जप कर लिए, दर्शन कर लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी वही विषयों की तरह मन स्वाभाविक भागता है, जैसे नदियां समुद्र की तरफ भागती हैं, कुंती महारानी की प्रार्थना में वो कह रही है। तो हमारा मन कैसे भगवान से आकर्षित होगा? तो भगवान उद्धव को बता रहे हैं कि जब ऐसी स्थिति हो तो क्या करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं अपनी सेवा को और तीव्र कर दो, और तीव्रता से सर्विस सेवा करो, व्यवहारिक अपनी इंद्रियों को सेवा में रत कर दो, क्योंकि यही विधि है और कोई विधि नहीं है। यहां लिखा जा रहा है बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के, कुछ और इसमें ऐड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ और करना है क्या, कुछ और सुनना है, कुछ और पढ़ना है, कोई और मंत्र का जप करना है, किसी और के दर्शन करने हैं, नहीं, इसी को करना है, लेकिन और तीव्रता से, क्योंकि कई कई जन्मों का मैल भरा पड़ा है, कई कई जन्मों का। तो अपने मन में भगवान के रूप प्रति आकर्षण उत्पन्न करने के लिए खूब तीव्रता से सेवा करनी पड़ेगी। विष्णु पुराण या किसी उसमें एक प्रार्थना आती है कि हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस प्रकार एक युवक युवती से स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो जाता है और युवती युवक से स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो जाती है, उसी ढंग से हे भगवान हम आपके प्रति स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो जाए। तो ये हम साधकों को भगवान के विग्रह के सामने खड़े होकर प्रार्थना करनी चाहिए और अपने भक्ति योग की विधियों को यानी कि नियमों को और जो प्रैक्टिकल हमें सेवा मिली है उसको पूरे उत्साह से और तीव्रता से करना चाहिए। तो जब हम ऐसा करेंगे तो भागवतम में के तीसरे स्कंद में ही भगवान कपिल बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि कितनी महिमा है इस भक्ति योग की। वो कहा जा रहा है कि अगर एक कनिष्ठ अधिकारी भी जिसने अभी वैदिक शास्त्रों का पूरा अध्ययन भी नहीं किया, जिसको कोई ज्यादा भगवत ज्ञान भी नहीं है, अगर वो भी भगवान के जब दर्शन करता है अर्च विग्रह के और भगवान को बहुत ही भावपूर्वक प्रणाम करता है और उनका गुणगान करता है तो क्या होता है, अनिच्छो में गति मणमीम प्रयुक्ते, क्या होगा कि भगवान के मुस्कुराते और आकर्षक स्वरूप को देखकर तथा उनके अत्यंत मोहक शब्दों को सुनकर शुभ भक्त अपनी समस्त अन्य चेतना खो बैठते हैं, उनकी इंद्रियां अन्य समस्त कार्यों से मुक्त होकर भक्ति में लीन हो जाती है, इस प्रकार अनिच्छित ही सही उसे अनायास मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अनिच्छों में उसकी कोई इच्छा नहीं है, यानी कि जब हम यहाँ मंदिर में प्रवेश करते हैं और श्री श्री राधिका रमन जी के सुंदर विग्रह का आल्टर का दर्शन करते हैं तो होता क्या है, हमारे मुख से निकलता है जय राधिका रमन जी की जय, और हम बहुत श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करते हैं और भगवान के लिए हम फल फूल इत्यादि लाते हैं और भगवान के अर्च विग्रह को देखकर हम प्रार्थनाएं बोलते हैं और यहाँ पर आकर हम विग्रह के दर्शन भी करते हैं और साथ साथ क्या किया, विलास भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं, जैसे कि आप सब हम सब लोग अभी कर रहे हैं, दर्शन भी करेंगे, भगवान की लीलाओं का श्रवण भी करेंगे और भगवान को हमने फल फूल आदि अर्पित भी किए, प्रार्थनाएं भी अर्पित की, तो क्या होगा कि कनिष्ठ से कनिष्ठ अधिकारी भी, उसको महाभागवत होने की आवश्यकता नहीं है, कुछ समय के लिए कनिष्ठ अधिकारी अपने भौतिक चेतना को भूल जाता है। होता है हम सबके सबके साथ हुआ कभी ऐसा, है ना, भगवान के सुंदर विग्रह के दर्शन करते ही भूल जाते हैं ना, सारी भौतिक चेतना को भूल गए और भगवान के लिए कुछ उपहार लाते हैं, रखते हैं, भगवान से प्रार्थनाएं करते हैं और बैठे कथा का श्रवण करते हैं। तो अगर आपकी इच्छा भी नहीं है, बोले नहीं नहीं मुझे भगवत धाम नहीं जाना, तब भी क्या करेंगे, अनायास ही आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो यह है भक्ति योग की महिमा, बिना इच्छा किए भी राधिका रमन जी, जय जय श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय, गौरताय की, बिना इच्छा किए भी अनायास ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है, ये है भक्ति योग की महिमा। श्रीला भक्ति सिंह श्री ठाकुर महाराज तो ये कहते हैं कि भक्ति योग इतना महान है और इसकी तुलना हम किसी और पद्धति से कर भी नहीं सकते। अगर कोई एक कोई भी व्यक्ति आकर मंदिर में एक घंटी बजा देता है, बस आया और उसने घंटी बजा दी, वो व्यक्ति बड़े बड़े जो परम कल्याण के कार्य कर रहे हैं, लोगों के लिए अस्पताल खुलवा रहे हैं, प्याऊ खुलवा रहे हैं, कपड़े बांट रहे हैं, उनसे उसकी स्थिति कहीं आगे है, जिसने ना कोई तपस्याएं की हैं, ना कोई प्याऊ खुलवाए हैं, ना कोई अस्पताल खुलवाए हैं, ना कोई खाना बांटा है, क्या किया है, केवल भगवान कृष्ण के मंदिर में आके केवल घंटी बजा दी है। तो देखिए इतनी भक्ति योग की महिमा है कि ना चाहते हुए भी, आपकी इच्छा भी नहीं है, आप पूर्ण रूप से आ सकते हैं, पूर्ण रूप से भी आ सकते हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी भगवान हमें मुक्ति प्रदान करते हैं। तो क्या करना है, भगवान के दर्शन करने हैं और भगवान की लीलाओं का श्रवण करना है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला कि भक्ति के 64 अंगों में जो पंचांग भक्ति है ये बहुत शक्तिशाली है। साधु संग, भागवत श्रवण, हरि नाम, शिव मूर्ति या शद्रा सेवन, मथुरा वास, तो ये 5 जो अंग हैं इनका अगर हम पालन करते हैं तो एक कनिष्ठ से कनिष्ठ भक्त भी शुद्ध भाव को प्राप्त कर सकता है। उसके बाद भगवान कपिल बहुत ही अच्छे ढंग से माता देवहूति को समझा रहे हैं कि किस ढंग से हमें भगवान के रूप का ध्यान करना चाहिए। बताया जाता है कि जो एक योगी है, अगर हम राधिका रमन जी के दर्शन कर रहे हैं तो दर्शन करते समय हम जाएं मंदिर से बाहर और हमें भगवान के रूप का स्मरण करना है तो राधिका रमन जी ऐसे नहीं आने चाहिए, यहाँ राधिका रमन जी हैं, पूरे रूप में नहीं आने चाहिए। अगर ऐसे आएंगे तो एक कुछ एक निर्विशेष की तरफ बढ़ता है। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम इतने अच्छे ढंग से दर्शन करके जाएं कि भगवान के एक एक अंग का हमें स्मरण हो। तो हम दर्शन करें तो एक एक अंग का हमें दर्शन करना चाहिए, तो ये ज्ञान हमें होना चाहिए। शुरू शुरू में तो हम आते हैं तो हम तो दर्शन में नहीं करते, हम तो आंखें बंद कर लेते हैं, भगवान से डर लगता है, जैसे आंखें बंद करके अपने जो लिस्ट है, लिस्ट ऑफ डिजायर्स, खट 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 सुना दी और फिर चल पड़े। लेकिन हमें भगवान का दर्शन करना चाहिए। तो कैसे दर्शन करना चाहिए, कहां से शुरुआत करनी चाहिए भगवान के दर्शन? चरणों से पहले भी, चरणों के जो तल हैं, यहां तो उसके भगवान के जो चरणों में जो निशान है, अंकुश, ध्वजा, कमल, चंद्र, उनका हमें स्मरण करना चाहिए। यहाँ पे हमें अर्श विग्रह में वो दर्शन तो प्राप्त नहीं होते, इनको हम स्मरण कर सकते हैं कि भगवान के चरणों के तल में ये निशान है और उनका क्या क्या महत्व है। फिर हमें आना चाहिए भगवान के नाखूनों में, है ना। बताया जाता है कि भगवान के जो नाखूनों की शोभा है वो चंद्रमंडल से मिलती जुलती है और हृदय के गहन तम को भी वो दूर कर देती है। हमारे हृदय में जितना अंधकार है वो भगवान के चरणों से, के नाखूनों से जो प्रकाश उत्पन्न हो रहा है वो हृदय के गहरे से गहरे अंधकार को भी नाश कर देती है। फिर हमें ध्यान देना चाहिए भगवान के चरणों में। भगवान के चरणों के बारे में बताया गया है, ध्यायतु मना शम शैलनी श्रष्ट वज्रम ध्याय चिरम भगवत चरणार विंदम, कि भगवान के चरण उस व्रज के तुल्य हैं जो ध्यान करने वाले भक्त के मन में संचित पाप के पहाड़ को ध्वस्त करने के लिए चलाया जाता है। हमारे मन में मैल का पहाड़ जमा हो गया है, कई जन्मों का मैल जमा हुआ है, तो भगवान के चरण एक व्रज के समान है जो कि इस पहाड़ को ध्वस्त कर देते हैं। करना चाहते हैं हम सब, या उस मैल से हमें आ सकती है, नहीं ये मेरी मैल मैं रखूंगा, तो क्या करना है, भगवान के चरणों का हमें बहुत ध्यान पूर्वक दर्शन करना है। देखना चाहिए कि आज भगवान के चरणों में कितनी तुलसी लगी है, कितने तुलसी दल हैं आज, एक दल है, कल कितने दल लगते हैं तुलसी दल, कल 2 थे, और भगवान के उंगलियों में क्या क्या डाला है पुजारी जी ने, किस ढंग के नूपुर हैं, कौन से रंग के नूपुर हैं, इन सब का हमें अच्छे रंग से दर्शन करना चाहिए। और भक्त लोग आपस में एक स्पिरिचुअल कंपटीशन कर सकते हैं कि बताओ आज भगवान ने क्या क्या डाला, कौन कौन सा श्रृंगार है, कैसे है। हमारी तो ये स्थिति है, कई बार तो ये भी ध्यान देता कि भगवान की पोशाक का रंग क्या है, इतनी जल्दी हम भूल जाते हैं। तो ऐसे दर्शन नहीं करने, बहुत ध्यानपूर्वक हमने दर्शन करना है भगवान के चरणों का। फिर हमें ऊपर बढ़ना चाहिए, भगवान की एड़ियों से होते हुए, भगवान के घुटनों से होते हुए भगवान की जांघों में जाना चाहिए। बताया गया है कि भगवान की जांघों में समस्त शक्ति का आगार है। भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा हुआ है कि जब भगवान की आयु 13 वर्ष की थी तो उनकी जांघें इतनी बलवान थी जैसे कि हाथी की सूंड होती है, इतनी बलवान। और भगवान की जांघों में समस्त शक्तियां हैं। और फिर हमें ऊपर आना चाहिए, कभी कभी पुजारी जी हमें भगवान की नाभि का भी दर्शन कराते हैं उधर का, है ना। अगर आप वृंदावन में जाएंगे राधा श्याम सुंदर जी, तो राधा श्याम सुंदर जी के उधर का अक्सर दर्शन हो जाता है और उनकी नाभि के आसपास भी बहुत सुंदर श्रृंगार हुआ होता है। तो बताएगा कि भगवान की नाभि, जैसे शिव जी ने पिछले श्लोक में वर्णन किया, बहुत गहरी है, बहुत गहरी है, और इसी से सारे ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है, क्योंकि इसी से सारे ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है, इसलिए सारे के सारे ब्रह्मांड भी इसी में लीन हो जाएंगे। तो उनकी नाभि का हमें दर्शन करते हुए ऊपर आना चाहिए और भगवान के वक्ष स्थल पे ध्यान देना चाहिए। और फिर भगवान के गर्दन पर जो फूलों की माला लटकी हुई है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। भगवान की गर्दन पे जो श्रृंगार किया गया है, भगवान के अलग अलग अंगों पे, भुजाओं में, उनका हमें ध्यान देना चाहिए। ये जितने भी आभूषण हैं ये भगवान को सुशोभित नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भगवान की सुंदरता इन आभूषणों को सुशोभित कर रही है। फिर हमें भगवान के मुखारबिंद पर आना चाहिए। भगवान के मुखारबिंद को जो हम देखते हैं तो भगवान की बहुत ही करुणामय दृष्टि, भगवान कपिल कह रहे हैं कि इस करुणामय दृष्टि से क्या होता है कि जीव के जो तीन ताप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। हम सब अभी तीन ताप से तपित हैं, तो भगवान की करुणामय दृष्टि के दर्शन से वो तीन तापों से हमें मुक्ति मिलती है। और भगवान की जो मुस्कान है इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। भगवान की मुस्कान पे ध्यान देने से क्या होता है, कहा गया है कि इस भौतिक जगत में बद्ध जीवों के आंसुओं से समुद्र के समुद्र बने पड़े हैं। हम केवल इसी जन्म में नहीं रो रहे हैं, हर एक जन्म में हम रोते हैं, हर एक योनि में, क्योंकि यहां इतने दुख हैं इस संसार में। तो रो रोकर असंख्य जीव हैं और असंख्य जीव असंख्य काल से रो रहे हैं और आंसुओं के समुद्र भर गए हैं। वो सारे के सारे समुद्र भगवान की मुस्कान को देखते ही सूख जाते हैं। तो हमें भगवान की मुस्कान पे ध्यान देना चाहिए। तो इस ढंग से हमें भगवान के रूप का ध्यान करना चाहिए। तो इस ढंग से हम भगवान के रूप का ध्यान करेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारा मन है वो शुद्ध होगा और धीरे धीरे इस भगवान के रूप के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ेगा। कुंती महारानी क्या प्रार्थना कर रही हैं कि मैं बार 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 आपका दर्शन करूं। क्यों, बार बार आपका दर्शन करने से ही बहुत शीघ्रता से मुझे इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा मिलेगा। तो जितनी हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम मंदिर आएं, और अगर हम मंदिर में रहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हम भगवान के दर्शन करें, है ना। जैसे आज अधिक मास चल रहा है, आजकल अधिक मास का मतलब है अधिक कौन से कार्य अधिक करने, आध्यात्मिक कार्य अधिक करने हैं। तो ये हमारा मेन बिजनेस है, तो इसमें क्या करने, अधिक से अधिक हमें भगवान के दर्शन करने हैं। कुछ भक्तों ने ये तपस्या की होती है कि अधिक मास में वो निश्चित रूप से मंगल आरती आएंगे ही आएंगे, और कुछ भक्तों की मंगल आरती नहीं आ सकते तो निश्चित रूप से दर्शनार्थी आएंगे ही आएंगे, और निश्चित रूप से दर्शनार्थी आने के बाद भागवत श्रवण करेंगे ही करेंगे। यही एक मौका है, एक फैसिलिटी मिल रही है, अधिक मास की बहुत महिमा है। तो अधिक से अधिक हमें तपस्या करनी है, अधिक से अधिक भगवान के दर्शन करने हैं। यही विधि है और कोई विधि नहीं है मन को शुद्ध करने की, बता रहे हैं। अगर आत्म शुद्धि अभिप्सिताम, अगर आप अपना शुद्धिकरण चाहते हैं, एतत् रूपम अनुध्येयम्, इस रूप का आप ध्यान करो, कृष्ण के रूप का ध्यान करो। तो ये जो भगवान का रूप है ये काल्पनिक नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं जो मायावादी हैं कि ये जो भागवतम पूरा काल्पनिक है, ये भगवान का रूप, भगवान के अंगों का जो वर्णन है पूरा का पूरा काल्पनिक है। अच्छा है, ठीक है, ध्यान लगाने के लिए अच्छा तरीका है, तो कहीं पर तो ध्यान लगाना ही है तो ये ध्यान लगा लो। नहीं, ये सच्चिदानंद विग्रह हैं, ये भगवान के विग्रह हैं, भगवान है, ये स्वयं सच्चिदानंद है। अगर हम इसको सच्चिदानंद नहीं मान रहे तो हम पाखंडी हैं। भक्ति सिद्धांत महाराज कह रहे हैं हम पाखंडी हैं। तो इसको हमने मानना है कि स्वयं भगवान है। और देखिए, भगवान करुणा करके हम सबके सामने प्रकट हुए हैं कि हम भगवान के रूप का ध्यान कर सकें। इन दूषित इंद्रियों से भी हम भगवान के रूप का ध्यान कर सकते हैं और अपने इन दूषित इंद्रियों को हम शुद्ध कर सकते हैं। तो इस ढंग से हमें भक्ति में लगना है। और इस श्लोक के अगले ही वाक्य में बताया गया है कि इस ढंग से अगर हम लगेंगे तो क्या होगा, यद भक्ति योगो अभेद स्वधर्मम अनुनिष्ठिताम। तो इस भक्ति योग को करने से अगर हम अपने अपने कार्यों में भी रत हैं, आप सब अपने अपने परिवार में हैं और अपने अपने बिजनेस में, व्यवसाय में व्यस्त रहते हैं, तो ये सब करते हुए भी जैसे कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना को उदित कर रहे हैं, स्थाने स्थिता श्रुति गताम तन मनु तनुवाक मनो भी, कि अपने अपने स्थान में स्थित होकर क्या करना है, आपको श्रवण करना है और भक्ति योग के नियमों का पालन करना है। तो उससे क्या होगा कि हम सब निर्भीक हो जाएंगे। ये भक्ति योग हमें अभय प्रदान करेगा। देखिए, इस संसार में हर कोई व्यक्ति भयभीत है, हर जीव भयभीत है, हर जीव। हम देखते हैं सुबह सुबह जब चिड़िया दाना चुगने आती है تو ایک دانہ چکتی ہے پھر ادھر ادھر دیکھتی ہے، پھر ایک دانہ چکتی ہے پھر ادھر ادھر دیکھتی ہے، تو کیوں ہے سب؟ اس کو بھے لگا ہوا ہے کہ ابھی کوئی آئے گا اور میرا آہار بند ہو سکتا ہے. تو ہر جیو بھیبھیت اوستھا میں ہے. اس لیے بھگوان کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ میری شرن میں آؤ، میں تمہیں سارے بھے سے مکت کر دوں گا. ماں شوچا، ڈرو مت، آپ میری کیول شرن گرہن کرو. تو اگر ہم اپنے اپنے کرموں کا پالن کرتے ہوئے بھگوان کے اس بھکتی یوگ کے ہم نیموں کا پالن کریں گے تو ہم نربھیک ہو جائیں گے. اور سب سے بڑا بھے کس کا ہے؟ مرتیو کا بھے. تو بھگوان نے ارجن کو گیتا میں کیا سندیش دیا؟ تسمات سرویشو کالیشو مام انوسمرن یدھ چا، کہ ہر سمے تم میرا سمرن کرو اور یدھ کرو. تو بھگوان نے تو ارجن کو یہ سندیش دیا، لیکن اسی یدھ کے میدان میں ایک اور بھاگوت تھے جو کہ سندیش کا واستوک روپ سے پالن کر رہے تھے. کون تھے وہ؟ بھیشم پتامہ. تو بھیشم پتامہ جی کا بھاگوتم کے پہلے سکند میں بہت سندر ورنن آتا ہے. تو وہ ادھارن ہے کہ کیسے انہوں نے سودھرما انوشٹھتام، اپنے دھرم کے پالن میں وہ رت بھی تھے اور ساتھ ساتھ بھگوان کے روپ کا وہ سمرن بھی کر رہے تھے. تو جب وہ مرتیو شیا پہ لیٹے ہوئے تھے تو بھگوان ان کے سامنے کھڑے تھے اور وہ کیا کر رہے تھے؟ بھگوان سے سندر سندر پرارتھنائیں کر رہے تھے. کہہ رہے تھے کہ میرا من آپ پہ کیسے کیندرت ہو، میں آپ کے اس روپ کا دھیان کرنا چاہتا ہوں جب گھوڑوں کی ٹاپوں سے اڑی ہوئی دھول سے آپ کے لہراتے ہوئے کیش میلے ہو گئے تھے، اور یدھ کی بھومی میں شرم کرنے سے پسینوں کی بوندوں کی لڑی آپ کے ماتھوں پر تھی، اور آپ اپنے بھکت ارجن کی رکشا کرنے کے لیے رتھ کا پہیا اٹھا کر بھاگ رہے تھے، اور آپ کے شریر سے جو اتری وسط تھا وہ نیچے گر رہا تھا، تو ایسے تمال شام ورن کا میں آپ کا دھیان کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، اور آپ کے شریر پر جو میرے دوارا باڑوں کا پرہار کیا گیا تھا اس سے جو رکت نکل رہا تھا اس سے آپ کا شریر اور النکرت ہو رہا تھا. تو کتنا سندر روپ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پینٹنگ ہمیں ملتی ہے کہ بھگوان کے بال لہرا رہے ہیں، اس پہ دھول لگی ہوئی ہے، بھگوان کے شریر پر پسینوں کی بوندوں کی لڑی لگی ہے، اور بھگوان کا جو اتری ہے وہ نیچے گر رہا ہے، اور جگہ جگہ سے بھگوان کا رکت باہر نکل رہا ہے. حالانکہ دیویہ شریر ہے پھر بھی رکت باہر نکل رہا ہے. تو بھیشم پتاما یہ پرارتھنا کر رہے ہیں کہ میرا من ایسے روپ پر کیندرت ہو جائے، اور انہی بھگوان کے روپ کا دھیان کرتے ہوئے انہوں نے اپنے شریر کو چھوڑا. اسی ڈھنگ سے ہریداس ٹھاکر جی نے چیتنیہ مہاپربھو سے یہ پرارتھنا کی کہ آپ کے اندر دھیان ہونے سے پہلے میں شریر چھوڑنا چاہتا ہوں. تو چیتنیہ مہاپربھو نے ان کو رکھا، ان کے چیتنیہ مہاپربھو نے ہریداس ٹھاکر جی کے شریر کو اپنے گود میں رکھا، اور ہریداس ٹھاکر جی چیتنیہ مہاپربھو گور سندر کے سندر مکھ مکھارون کا درشن کرتے ہوئے شری کرشن چیتنیہ کرتے کرتے انہوں نے شریر کو تیاگا. تو ہم اپنے اپنے کاریوں میں رت رہیں گے اور بھکتی یوگ کا پالن کریں گے تبھی ہم نربھیک ہو سکتے ہیں، انیتھا اس سنسار میں ہم ہمیشہ بھیبھیت رہیں گے کہ کہیں میرے ویوسائے میں نقصان نہ ہو جائے، کہیں پریوار میں کچھ جھگڑا نہ ہو جائے، کہیں میرا سواستھیہ خراب نہ ہو جائے. طرح طرح کے بھے ہمیشہ ہمیں ستاتے رہتے ہیں، طرح طرح کے بھے، اور ان بھے سے بچنے کے لیے ہم طرح طرح کے اپائے کرتے رہتے ہیں، لیکن کیول ایک ہی اپائے ہے جو ہمیں ابھے پردان کر سکتا ہے، وہ ہے بھگوان شری کرشن کی بھکتی. اس لیے ہم چاہے کسی بھی ون میں کیوں نہ ہو، کسی بھی آشرم میں کیوں نہ ہو، ہمیں پورن روپین بھگوان کے چرنوں کی شرن گرہن کرنی چاہیے، اور پورے ہردے سے ہرے کرشنا 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 ہرے ہرے، ہرے رام 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 ہرے ہرے. جب تک ہم دیہاتم چیتنا میں ہیں، کیونکہ یہ دیہ استھائی ہے، کیونکہ اس بھوتک سنسار میں ہر چیز استھائی ہے، اس لیے وہ بھے کا کارن ہے. تو ہم نے اس دیہاتم چیتنا کو، یعنی کہ ہمیشہ ہم اپنی دیہ کے وشے میں سوچتے رہتے ہیں، تو اس چیتنا کو ہم نے بدلنا ہے کہ ہم بھگوان کی دیویہ دیہ پر کیندرت کریں. دیہاتم چیتنا اپنی دیہ پہ کیندرت نہ کر ہم بھگوان کی دیویہ دیہ پر کیندرت کریں، بھگوان کے آدیشوں پر کیندرت کریں، اور پھر ہم اپنے آپ کو نربھیک بنا سکتے ہیں. جب تک ہم اس بھوتک چیتنا میں رہیں گے تب تک ہمیشہ ہم ڈرے ہوئے رہیں گے، اسرکشت رہیں گے. دیکھیے، بھکتی یوگ کوئی کالپنک نہیں ہے، یہ کوئی منودھرم نہیں ہے، یہ بھگوان کے وگرہ، بھگوان کے جو آدیش، یہ ایک وگیان ہے. تو اسے پورا وشواس ہونا چاہیے، رکشستی اتی وشواسو، کہ بھگوان میری رکشا کریں گے. इस संसार में हर चीज माया है, अस्थाई है, केवल भगवान के विग्रह, भगवान का नाम और भगवान के प्रतिनिधि, ये परम सत्य के प्रतिनिधि हैं, ये परम सत्य हैं, बाकी सब माया है। तो इन तीनों का सहारा हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि संसार ने की रचना भगवान ने ऐसी की है कि बड़ा उथल पुथल रहेगा ही रहेगा, कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी ऊपर कभी नीचे, तो हम भयभीत हो जाते हैं। लेकिन उन्हें पूर्ण रूप से भगवान के, भगवान की भक्तों की और भगवान के नाम की शरण ग्रहण कर रखी है, तो हर परिस्थिति में हम निर्भीक रहेंगे। यही एक तरीका है हम अपने आप को आध्यात्मिक चेतना में रख सकें। तो अक्सर लोग, आजकल हमारी बुद्धि इतनी दूषित है कि यहां कहा जा रहा है कि भक्ति योग से हम निर्भीक होंगे, लेकिन आज के कलयुग में लोग भक्ति में आने से डरते हैं। कितनी बड़ी, देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है, भक्ति में आगे बढ़ने से हमें डर लगता है। बड़े बड़े लोग हमें बोलते हैं जो कि भक्ति में आ गए हैं, वो बोलते हैं कि ये डर है कि कहीं बहुत ज्यादा आगे ना बढ़ जाऊं, कहीं बहुत ज्यादा ना हो जाए, अति ना हो जाए, इसलिए मैं डरता हूं। जितना ज्यादा हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे उतना ज्यादा हमारा भय समाप्त होगा। और कपिल भगवान बता रहे हैं कि भक्ति में आगे बढ़ने से, इस भक्ति योग का नियमों का पालन करने से आपको सारे भौतिक ऐश्वर्य तो स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे, स्वतः ही, उनके लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। हमें इस संसार में भय तभी रहता है कि थोड़े बहुत जो हमारे ऐश्वर्य हैं कोई हमसे छिन ना जाए, और उसी ऐश्वर्य को की सुरक्षा के लिए हम तरह तरह की इंश्योरेंस कंपनीज के पास जाते हैं, लेकिन वो इंश्योरेंस कंपनी से हमें सुरक्षा प्रदान नहीं होगी। सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं भगवान, भगवान का नाम और भगवान के प्रतिनिधि यानी कि भक्तगण, तो इनकी हमें शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो जैसे कि भागवतम के 11वें स्कंद में योगेंद्र जी निमि महाराज को ये उपदेश दे रहे हैं कि भय कैसे उत्पन्न होता है। भयम द्विति अभिनय विशेषशा स्याद, कि जो भय की उत्पत्ति का कारण है कि हम अपने आप को इस भौतिक चेतना में डाल देते हैं। तो क्या है, इशाद अपेक्षा विप्रयो स्मृति, जब हम भगवान को विस्मरण कर देते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, तो भौतिक चेतना में लिप्त होते हैं, वही भय का कारण बनता है। तो क्या करना चाहिए, तन माया अतो बुद्ध अभजेत तम भक्त्या एक ये शाम गुरु देवात्मा। तो क्या करना चाहिए, तो इस भयभीत स्थिति से जिसको कि माया कहा गया है, इससे एक बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए, आमिश्रित शुद्ध भक्ति में जुड़ना चाहिए, एक भगवान के प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु के निर्देशन में। और उस गुरु की कैसे पूजा करनी चाहिए, गुरु देवात्मा आत्मा, समझे, गुरु देवात्मा आत्मा, यानी को गुरु को हमें एक वर्शिपेबल डीटी के रूप में, यानी कि साक्षात हरि के रूप में, अपनी आत्मा के रूप में, जीवन और आत्मा समझते हुए, गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए अगर हम भक्ति योग करेंगे तो हम इस भय से, जो माया बहुत ही भयभीत करने वाली है, इससे हम मुक्त हो सकते हैं। और इसी ढंग से सुखदेव महाराज जी ने भी भागवतम के 2वें स्कंद में ही बहुत प्रसिद्ध श्लोक है जो कि उसको बताया, श्रोतव्य कीर्तिव्यश्च स्मरतव्यश्च अभ्य अभ्यतश्च, ऐसा कुछ श्लोक है कि भगवान के श्रवण कीर्तन और स्मरण से ही हमें अभय प्रदान होगा, और कोई तरीका नहीं है। कि अगर हम भयभीत हो रहे हैं किसी भी स्थिति में तो क्या करना चाहिए, उस भय से बचने के लिए हमें श्रवण कीर्तन और स्मरण को बढ़ाना होगा, और गुरु को साक्षात हरि समझते हुए गुरु के आदेशों का सख्ती से पालन करेंगे तो हम भय से बच सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है हमें भयभीत होने की, क्योंकि इस संसार में हर चीज अस्थाई है। हर जन्म में हम डरे हैं, डरते हुए रहे हैं, है ना। जन्म के समय हमारा मां के गर्भ में थे तब संघर्ष, जन्म हुआ तब संघर्ष, पूरा जीवन संघर्ष, मृत्यु के समय संघर्ष, फिर नया जन्म, फिर संघर्ष, तो चलता रहेगा। जहां संघर्ष है वहां भय रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर हम श्रवण कीर्तन और स्मरण को अधिक करेंगे और गुरु को भगवान की तरह देखते हुए, साक्षात हरि समझते हुए उनके आदेशों का पालन करेंगे तो हम भय से मुक्त हो सकते हैं। तो ये हमें प्रयास करना है कि हम किसी भी वन और आश्रम में क्यों ना हो, केवल एक यही विधि है कि हम अपने आप को हमेशा हम शुद्ध करें, क्योंकि आप देखिए पचेतस गण अभी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाले हैं, उससे पहले उन्होंने 10,000 साल तपस्या की और भगवान शिव को गुरु ग्रहण करके उनकी आज्ञा का पालन किया। इसी ढंग से हम चाहे किसी भी आश्रम में क्यों ना हो, हमें इस भक्ति योग के नियमों का पालन करते हुए अपने इस जीवन के लक्ष्य को, जो कि अपने आप को शुद्ध करना है, उसको हम प्राप्त करें। श्रीला भक्ति सांसद ठाकुर महाराज कहते हैं कि इस आध्यात्मिक जगत की सूचना हमें कैसे मिलती है, तीन चीजों से हमें आध्यात्मिक जगत की सूचना मिलती है। वो क्या है, अभी भी बताया, भगवान के विग्रह, भगवान का नाम और भगवान के प्रतिनिधि। तो इन तीनों का आपस में बड़ा घनिष्ठ संबंध है। हमें अर्च विग्रह पत्थर क्यों लगते हैं, क्योंकि हमारी भगवान में के नाम में रुचि नहीं है। भगवान के नाम में हमारी क्यों रुचि नहीं है, क्योंकि जिसके द्वारा हमें भगवान नाम प्राप्त हुआ उसमें हमारी कोई रुचि नहीं है। यानी कि गुरु को हम साधारण व्यक्ति समझते हैं, वैष्णव की कृपा से जो हमारी नाम प्राप्त हुआ उनको हम साधारण समझते हैं। जब तक हम गुरु और वैष्णव को साधारण समझेंगे, यहां श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि इन भौतिक इंद्रियों द्वारा हम भगवान के संगी जनों को भी नहीं समझ सकते, भगवान के भक्तों को भी नहीं समझ सकते। तो जब तक हम ये गलती करते रहेंगे कि गुरु और वैष्णव को हम साधारण मनुष्य समझेंगे, तो भगवान नाम में, भगवान नाम हमें प्रकट नहीं होगा, उसकी दिव्यता प्रकट नहीं होगी, अर्च विग्रह की दिव्यता प्रकट नहीं होगी। क्योंकि गुरु ही हमें हरि नाम देते हैं और गुरु ही हमें अर्च विग्रह की सेवा में संलग्न करते हैं। शिव विग्रह राधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जना तो युक्तस्य भक्तांश चनी अंजतोपी वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। युक्तस्य भक्तांश, कि गुरु जो श्री विग्रह की सेवा में लगे हुए हैं वो भक्तों को युक्त करते हैं, लगाते हैं, और तभी हम इसमें इस अर्च विग्रह को भगवान के रूप में देख सकते हैं। तो प्रारंभिक स्थिति में जो हमने चर्चा की, अभी हमें प्रयास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि हम मन को जबरदस्ती लगाएं। तो मन को हम भगवान के विग्रह के रूप, भगवान के रूप में ध्यान में तभी लगा पाएंगे जब हमने बहुत अच्छा श्रवण और कीर्तन किया होगा। अच्छा श्रवण कीर्तन करेंगे तभी हम ज्यादा देर तक भगवान के विग्रह के दर्शन कर पाएंगे। तो शुरू शुरू में श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं कि इसको बोला जाता है निर्बीज योग। निर्बीज योग यानी कि इसमें कोई जीवन नहीं है, जबरदस्ती करना पड़ रहा है हमें, तो निर्बीज लगेगा ये, लेकिन धीरे 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 ये बन जाएगा सबीज योग। सबीज योग का अर्थ है ये जीवंत हो जाएगा, इसमें जीवन स्वाभाविक रूप से हमारा श्रवण कीर्तन और अर्च विग्रह में आकर्षण उत्पन्न होगा। तो इसलिए ये साधना भक्ति की प्रक्रिया है, इस हमें साधना के रूप में इसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न या टिप्पणी? हाँ जी, सूक्ष्म शरीर होता है मन बुद्धि और झूठा अहंकार, उसको बदल रहे। विलय का अर्थ हुआ डिजॉल्व करना, लीन हो जाएगा। भगवान का विन का प्रश्न है कि भगवान का विराट रूप भी भौतिक है, एक भगवान का विराट रूप भौतिक है, सच्चिदानंद नहीं है, सत नहीं है, वो टेम्परेरी है, सच्चिदानंद नहीं कहेंगे, वो भौतिक है, लेकिन ये अर्च विग्रह ही सच्चिदानंद है। भगवान के विराट रूप के साथ हम कोई संबंध स्थापित नहीं कर सकते, लेकिन अर्च विग्रह के साथ हम संबंध स्थापित कर सकते हैं, ये सच है। नहीं, वो यहीं पे विलय हो जाएगा, यही तो है, यही सूक्ष्म शरीर तो हमें बांध के रखा हुए है। प्रश्न है प्रभु जी का कि सूक्ष्म शरीर छोड़ने का लाभ क्या है ना, ये पूछ रहे हैं ना। सूक्ष्म शरीर के अंदर ही हमारी इच्छाएं हैं, उन्हीं इच्छाओं के अनुसार हमें अगला भौतिक देह मिलता है। तो उन इच्छाओं को जब हम पूर्ण रूप से शुद्ध कर देंगे, आध्यात्मिक कर देंगे, तो उस आवरण की आवश्यकता नहीं है फिर। तो जब हम भक्ति योग करेंगे, हमारी पूर्ण रूप से आध्यात्मिक इच्छाएं हो जाएंगी, तो इस आवरण की, ये जबरदस्ती डाला गया ऊपर, एक कपड़ा है डाला गया, उसकी आवश्यकता नहीं है, फिर हम मुक्त अवस्था में आ जाएंगे, है ना। उसमें लिखा है कि कल के श्लोक में कह रहे हैं आप, ये भगवान आपके दोनों चरण कमल इतने सुंदर हैं, मानव शरद ऋतु में उन्होंने कमल पुष्प के दो खुलते दल हैं, आपके चरण कमलों से इतना बद्ध जीव के सारे जो भक्त के हृदय अंधकार को नष्ट कर देता है। वास्तव में जो भक्त है, जैसे कल शालिग्राम प्रभु भी कह रहे थे, भक्त ये नहीं कहेगा कभी कि मैं तो पूर्ण रूप से शुद्ध हूं, है ना, कि आप मुझे दर्शन दीजिए वैसे तो मैं शुद्ध ही हूं, ऐसा तो हम प्रार्थना नहीं करेंगे ना कि दर्शन दे दीजिए वैसे कोई आवश्यकता तो नहीं है, मैं पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुका हूं, अंदर दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो गया है, लेकिन फिर भी मैं दर्शन करने आया हूं बिकॉज संबंध है आपका मेरा। भगवान भक्त हमेशा यही प्रार्थना करता रहेगा कि मैं बहुत ही पतित हूं, दूषित हूं, अंधकार में भरा हुआ है, कृपया करके कृपा कीजिए। ये तो तीव्रता है भक्ति में बढ़ने की आगे, है ना। भक्ति अनलिमिटेड है, लिमिट नहीं होगा कि अब पूरी हो गई, ग्रेजुएशन हो गया कंप्लीट, नहीं, ये तो अनलिमिटेड है और बढ़ती जाएगी। तो भक्त हमेशा वो ललायित रहता है कि अभी और गंदगी भरी पड़ी है मेरे, बहुत गंदगी है, जितना हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे हमें लगेगा बहुत गंदगी है, बहुत अंधकार है। कनिष्ठ की स्थिति में सोचते हैं कि बस अब शुद्ध हो गए। साधना को अच्छा करने की शक्ति कहां से आएगी? साधना को अच्छा करने की शक्ति साधना करके ही आएगी, है ना। केवल लिप सर्विस से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल सेवा करनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल साधना करनी पड़ेगी। तो इस पे हम चर्चा ही करते रहते हैं कि कैसे 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 सब कैसे कैसे क्या आएगी, करो पहले तो, और अच्छे ढंग से करो, और अच्छे ढंग से करें, और अच्छे ढंग से करें। तो कैसे करना पड़ेगा? जो भक्त हैं जिनकी साधना अच्छी है उनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं, उनसे हम उत्साहित हो सकते हैं, उनका हम संग कर सकते हैं, तो साधना अपने आप अच्छी हो जाएगी। हाँ जी, तो भक्ति रसामृत सिंधु में भी और आर्ट ऑफ चैंटिंग में भी भगवान के अलग अलग चरण कमलों के जो चिन्ह हैं उनके बारे में बताया गया है, एक अलग ही विषय ये पूरा है, इसके बारे में फिर चर्चा कर सकते हैं। किन जीवों का? हरिम बिना ना स्तिम तरंति, बिना भगवान की भक्ति किए किसी का उद्धार नहीं हो सकता। जो मर्जी कर लो, जो मर्जी कर लो, जब तक भगवान श्री कृष्ण की हम भक्ति योग के में नहीं लगेंगे हमारा उद्धार नहीं हो सकता। ये भगवान ने उद्धव जी को सब कुछ बताने के बाद भागवतम के 11 स्कंदे बताया कि जब तक कोई मेरी भक्ति में नहीं लगेगा उसका इस जन्म मृत्यु से छुटकारा नहीं हो सकता, कोई अब कोई चांस ही नहीं है। घंटी तो भी लग जाएगी, बड़ा मंदिर बनेगा तो थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए, अपनी घंटी भी अपना सकते हैं, ताली भी आ सकते हैं, नॉक कर सकते हैं, कुछ भी उसी के बराबर है, है ना। घंटी का अर्थ है कि हम किसी के घर जाने से पहले घंटी बजाते हैं, तो भगवान के विग्रह दर्शन करने से पहले, क्योंकि भगवान तो लीला में लगे रहते हैं हमेशा, ये जो ठाकुर जी हैं राधा रानी जी लीला में लगे रहते हैं, लीलाओं में अनुरोध करते हैं हमेशा, तो जब भी आए तो डिस्टर्ब कर रहे हैं भगवान को, तो ऐसे ताली बजाएं या नॉक कर दें, जब तक घंटी नहीं लगती तब तक ऐसा कर लें। और दूसरा प्रश्न था कि हैप्पीनेस और ब्लिस में क्या अंतर है। इस भौतिक सुख में कभी भी भौतिक सुख शुद्ध सुख कभी भी नहीं है, मिश्रित सुख के बाद दुख जरूर आएगा, सुख भी मिलेगा तो उसमें दुख अवश्य होगा। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, गाय का दूध सबको अच्छा लगता है पीना, है ना, गाय का दूध पीते हैं तो सुख अनुभव होता है, लेकिन उसको दूध पीने से पहले कितना दुख उठाना पड़ता है, सुबह उठ के गाय की सेवा करनी पड़ती है, उसको धोना पड़ता है ना, फिर बाद में गाय को और चारा खिलाना, फिर चारा खिलाने के लिए खूब मेहनत करनी है, तब जाके फिर आपको एक ग्लास दूध मिलेगा जिसमें आपको थोड़ा सा सुख मिला। तो सुख को प्राप्त करने के लिए बहुत दुख है, और सुख के पहले भी दुख है, सुख के बाद भी दुख है, लेकिन जो आनंद है वो इस सुख और दुख से परे है, वह शुद्ध आनंद ही आनंद, केवल आनंद का अंत, उसमें कोई दुख का मिश्रण हो ही नहीं सकता। आध्यात्मिक आनंद है, सुख और दुख ये भौतिक है। हो सकता है भौतिक जगत में भक्त कहीं भी रहे आनंदित रहते हैं ना, सुख दुख से परे हैं भक्त, शुद्ध सत्व में, तो भक्त कहीं भी रहे आनंद में, नरक में रहे तब भी आनंद में। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जगद्गुरु श्रीला प्रभुपाद महाराज के ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की पिताय गौर प्रेमानंदे, श्री राधा राधिका रमन जी के, श्री गौनिताय जी के, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के, ताय गौर प्रेमानंदे।